जलवायु आपदा। सबसे पहले हम देखते हैं इस जलवायु आपदा में बाढ़। बाढ़ एक प्रकोप है, फ्लड हैजर्ड एक आपदा, एक प्रकोप है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है एक विशाल भूभाग पर कई दिनों तक जल के बना रहना, जल का बना रहना या जलमग्न होना, ये बाढ़ का अर्थ होता है। इसका जब हम सामान्य अर्थ देखते हैं तो सामान्य अर्थ में लोग बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ की स्थिति उस समय होती है जब जल नदी के किनारों के ऊपर से बहता हुआ नदी के समीपी भागों को जलमग्न कर देता है। वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक पर्यावरण का एक गुण है तथा अप्रवाह बेसिन के जलीय चक्र का एक संघटक है। निश्चित ही बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है तथा अति जल वर्षा का परिणाम है। यह मात्र उस समय प्रकोप बन जाती है, आपदा बन जाती है, जब इसके कारण अपार धन और जन की हानि होती है। निश्चित ही मानव क्रियाकलापों द्वारा बाढ़ के परिमाण, आवृत्ति तथा विस्तार में वृद्धि हो जाती है। इसलिए बाढ़ को हम एक प्रकोप और प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों प्रकार का मानते हैं। अधिकतर बाढ़ का संबंध विस्तृत जलोढ़ मैदानों में बहने वाले जलोढ़ नदियों से होता है। विश्व के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 3.5% क्षेत्र पर बाढ़ मैदानों का विस्तार है, जिसमें विश्व की लगभग 16.5% जनसंख्या निवास करती है। जो बाढ़ की भयावह स्थिति है उनसे उत्पन्न प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति, धन एवं जन की हानि के संदर्भ में जो कुछ नदियां हैं जिनको हम कुख्यात नदियों के नाम से भी कह सकते हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, दामोदर, ये इत्यादि, ये सभी जो हैं उत्तरी भारत की ही नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो उत्तर प्रदेश भारत में है, ये भी तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी आदि नदियों के जो डेल्टाई भाग हैं सभी नदियां भारत की ही है। मिसिसिपी तथा मिसौरी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यांग टीसी, क्यांग तथा येलो ये चीन में है। इरावदी नदी म्यांमार में है। सिंध पाकिस्तान में है। नाइजर नाइजीरिया में है। पो इटली में है। दजला और फरात ये इराक आदि स्थानों पर है। तो हम देखते हैं कि बाढ़ एक मानवीय प्रकोप, अक्सर आप सुनते भी होंगे और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि ये मानव, ये प्राकृतिक प्रकोप एक मानवीय प्रकोप के रूप में बन जाता है। बाद में हम देखते हैं कि बाढ़ के ख़त्म होने के बाद तमाम तरह की बीमारियां, परेशानियां, आर्थिक कठिनाइयां मनुष्य को झेलनी पड़ती हैं। और इस बाढ़ के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रमुख कारण कौन कौन थे बाढ़ के, जो कारण हैं कार्य या फ्लड्स क्या क्या हैं। ये तो एक वैसे सामान्यतः प्राकृतिक घटना है, लेकिन ये भी एक दुर्घटना के रूप में प्रकट होती है, तो इसके कारण और निवारण पर हमको विचार करना जरूरी हो जाता है। इसलिए देखते हैं कि सबसे पहला कारण क्या होता है, वर्षा की अनिश्चितता। मतलब वर्षा की जो अनिश्चितता है ये भी बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। अनेक सूखे और आधे सूखे भागों में वर्षा कम होने से अपवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, और जब अधिक वर्षा होती है तो पानी निकलना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो वर्षा की अनिश्चितता से बाढ़ आ जाती है। राजस्थान में आने वाली बाढ़ उसी प्रकार की है जिससे अपार क्षति होती है। पर्यावरण परिवर्तन के रूप में वर्षा की अनिश्चितता प्रमुख कारण होती है। दूसरे नंबर पे आइए देखते हैं कि क्या होता है, वनस्पति विनाश। भारत आज संकट के कगार पे खड़ा है क्योंकि कुछ देशों से 10% भूक्षेत्र से कम भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार बन पाया है। बस हिमालय का वनस्पति विहीन होना उत्तरी भाग में बाढ़ के प्रकोपों का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अधिकांश नदियां यहां से निकलती हैं। अधिक तीव्र ढाल के कारण हिमालय क्षेत्र का चर्चा जल, हिमालय क्षेत्र का जो वर्षा का जल होता है वो तेजी से नदी में पहुंचता है, जिसे प्रवाहित करना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तीसरा क्रम आपका आता है बिंदु, मैं बताती हूँ कि बाढ़ के कारणों में कि नदी धारा में परिवर्तन, धरातल में कम ढाल और वर्षा काल में जल दबाव के कारण नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में सर्पाकार बढ़ती है और बाढ़ में धारा परिवर्तन कर लेती है। ऐसी दशा में बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्पाकार नदी की जो बहाव क्षमता है वो घट जाती है, जिससे जल बाढ़ के रूप में प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है और जल धारा में परिवर्तन होता है। तो क्षारण धारा और तालों के माध्यम से विस्तृत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है और बाढ़ आ जाती है। जल प्लावन में वर्षा के जल निकास न होने से, वर्षा के का जल निकल न पाने के कारण विस्तृत क्षेत्र जल में ही, जल से ही भरा रहता है और बड़ा नुकसान होता है, जनधन की हानि होती है। अगला कारण हम देखते हैं कि नदी तल पर मलबे का अधिक जमाव होना। नदियों के अपरदन परिवहन और निक्षेपण की एक प्राकृतिक व्यवस्था है। नदी अपने सामान्य प्रक्रिया में जितना काटती है उसे ढोती जाती है, लेकिन जब धरातल बंजर हो, धारा में भूस्खलन से अधिक मलबा नदी तल पर जमा हो जाता है तो नदी की अपवाह क्षमता को घटा देता है। इसलिए थोड़ी भी अधिक वर्षा होने पर नदी का जल फैलकर बाढ़ उत्पन्न करता है। हम देखते हैं कि उत्तर भारत की लगभग सभी नदियां इस स्थिति से प्रभावित हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्रम कि तटस्थ और तटीय अधिवास बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए जो तटबंध बाढ़ के कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक क्षेत्र या स्थान पर बाढ़ से राहत मिल पाती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों को उसका कष्ट भुगतना पड़ता है। तटबंध एक प्रकार से प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए बाढ़ की विभीषिका के कारण भारत के कुछ क्षेत्र गरीबी से उबरने में असफल रहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए अगले क्रम में देखते हैं नदी भाग में मानव निर्मित व्यवधान, मानव के विविध उपयोगों के कारण नदी धारा में व्यवधान आज सभी नदियों के अंदर में देखा जा सकता है। रेल और सड़क, जलाशय बांध, क्रीड़ा केंद्र, बिजली घर आदि के कारण नदी का जो स्वाभाविक अपवाह है वो बाधित होता जाता है। छोटे नालों में कृषि आदि के कारण बाधा खड़ी की गई है। इन व्यवधानों के कारण बाढ़ का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो बाढ़ की आपदा निरंतर बढ़ती ही जा रही है और उसका नुकसान हमको भोगना पड़ रहा है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40 करोड़ हेक्टेयर भूमि एवं 30 करोड़ व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित होते हैं और अरबों की संपत्ति नष्ट होती है। बहुत सारे पालतू पशु नुकसान होते हैं, जैसे औसतन 8 लाख मकान और 50,000 पालतू पशुओं का नुकसान होता है। मरने वालों की औसत संख्या लगभग 242 तो आंकी ही गई है। फसलों का नुकसान 2 अरब रुपए से अधिक आंका गया है। कभी कभी यह नुकसान बढ़ करके 9 अरब रुपए तक पहुंच जाता है। इस क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। तो ये सब बाढ़ से होने वाले नुकसान हैं। आगे हम देखते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। अगर हम बाढ़ का नियंत्रण करें तो किस प्रकार के उपायों को समझें। सबसे पहला है व्यवहारगत। बाढ़ को विपदा का, बाढ़ की जो विपदा है, मनुष्य को बड़ा इसका सामना करना पड़ता है, वही करता है और उसका नुकसान झेलता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक संकट है। यह संकट मानव जन्य भी है, इससे निपटने के लिए आर्थिक सहायता अत्यंत आवश्यक होती है। दूसरा नंबर आपका आता है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक। संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत हम निम्नलिखित उपायों को देख सकते हैं। जैसे क्रम पहले में आते हैं कि बाढ़ के मैदानों को काल प्रखंडों में बांटकर उनका नियोजन करते हैं, जैसे प्रति वर्ष पांचवें वर्ष प्रति 20 वर्ष बाढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत इत्यादि। इसे बाढ़ क्षेत्र नियोजक विधि कहते हैं, फ्लड प्लेन जोनिंग बाढ़ क्षेत्र नियोजक विधि। दूसरे नंबर पे आइए संरचनात्मक विधि के अंतर्गत कि बाढ़ से राहत हेतु छमक स्पिल कवर चैनल, जिसको आप कहते हैं स्पिल ओवर चैनल, नदियों ये जो है ये नालियों का निर्माण करना आता है। जब हम बाढ़ से राहत के लिए कुछ कार्य ऐसे करते हैं जैसे नालियों का निर्माण करना। अगले नंबर पे नदियों के मार्ग को गहरा करना। अगले नंबर पे तटबंध बनाना और बांध बनाना, तो आप जानते ही हैं। तो ये सब हैं बाढ़ को नियंत्रित करने के कारण। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, घाघरा व गंडक आदि नदियों के किनारे बाढ़ आना बड़ी ही कॉमन बात है, सामान्य घटना है। इन क्षेत्रों में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ें आती ही आती हैं। तो बाढ़ आपदा की लगभग 60% नुकसान केवल गंगा बेसिन क्षेत्र में मिलती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा असम की नदियों में बाढ़ें अक्सर आती रहती हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व पंजाब में आने वाली बाढ़ों की बारंबारता कुछ कम रहती है। 1976 से 78 ईस्वी के मध्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा बाढ़ों में से सर्वाधिक इफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए थे। 1993 ईस्वी में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 423 व्यक्तियों तथा 20,000 पशुओं की मृत्यु बाढ़ों से हुई थी। बताइए, बाढ़ से लगभग 27,00,000 एकड़ भूमि को नुकसान हुआ था। इस बाढ़ द्वारा तीनों राज्यों को 40,00,000 से भी अधिक आबादी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। 1996 ईस्वी की बाढ़ में हरियाणा में 4,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। पहाड़ी भागों में भूस्खलन से बाढ़ें आ जाती हैं। 1992 ईस्वी में गंगा नानी नामक स्थान पर भूस्खलन होने के कारण गंगा नदी का प्रवाह अवरुद्ध होने से झील बन गई, जिससे उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में बाढ़ आ गई। चमोली, गढ़वाल में बिरही गंगा में भूस्खलन द्वारा गोहना झील का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा 1977 ईस्वी में टूटने पर संपूर्ण अलकनंदा घाटी में बाढ़ आ गई थी। 1970 ईस्वी को बाढ़ द्वारा श्रीनगर, गढ़वाल क्षेत्र का जो एरिया है इसका बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ। तटबंधों और बांधों के टूटने से भी बाढ़ें आ जाती हैं। बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण अचानक जो बाढ़ें आती हैं उन्हें फ्लैश फ्लड कहते हैं। 1978 ईस्वी में सौराष्ट्र में मच्छू बांध टूटने से मोरबी शहर जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया था, नुकसान हो गया था इसका बड़ा। 1984 ईस्वी में पूर्वी कोसी तटबंध के टूटने से 100 से अधिक व्यक्ति मरे और 4.5 लाख व्यक्ति बेघर हो गए। 1978 ईस्वी में उत्तरी बिहार के तटबंधों में 245, 1985 ईस्वी में 150 तथा 1986 ईस्वी में 147 स्थानों पर कटाव होने से बाढ़ों की विभीषिका आ गई। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी बाढ़ों के लिए बहुत ही कुख्यात रही है। इसे बंगाल का शोक तथा चीन में हुआंगहो नदी में बाढ़ें आने से हुआंग को चीन का शोक कहा जाता रहा है। बांधों और जलाशयों की तली में गाद या सिल्ट के एकत्रित होने से नदियां और जलाशय छिटले हो जाते हैं, और यही कारण है कि 1993 ईस्वी में नैनीताल झील वर्षा के पानी को नहीं रोक सकी और बाढ़ का महत्वपूर्ण कारण बनी। इस झील की बाढ़ से नैनीताल व हल्द्वानी शहर तथा उत्तर प्रदेश के कई तराई क्षेत्र में धन जन की हानि हुई थी। आगे आपको अगला बिंदु मैं बताऊंगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू।